आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद रोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से दूर रहने का परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने मीडिया से रक्षा अभियानों या गतिविधियों से संबंधित स्रोत आधारित सूचना पर रिपोर्टिंग से भी दूर रहने की सलाह दी है। समय से पहले ही संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा देश विरोधी तत्वों के लिए सहायक साबित हो सकता है और सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि करगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमले और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों को प्रभावित किया था। सरकार ने विमान कंपनियों को हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के बीच यात्री सुरक्षा और नियमों का अनुपालन करने तथा यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि हाल के कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों पर रोक के कारण कई विमानों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। इससे उड़ान अवधि और तकनीकी ठहराव की संभावना बढ़ गई है। मंत्रालय ने विमान कंपनियों से कहा है कि वे यात्रियों को मार्ग परिवर्तन, विस्तारित यात्रा समय और यात्रा के दौरान किसी भी तकनीकी ठहराव के बारे में सूचित करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के अधिसूचित समय सीमा के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उचित और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं को भी लागू करने को कहा। दिल्ली सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के शहर छोड़ने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया है। पहले यह तिथि 26 अप्रैल थी। ये आदेश उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू है जो दिल्ली में रह रहे हैं और उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत निर्दोष पर्यटकों की मौत के विरोध में नेपाल में आज कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की निंदा करते हुए बैनर लेकर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल स्थित पाकिस्तान दूतावास को एक ज्ञापन सौंपकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बंद करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में शामिल होते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि देश के युवा मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत में कितनी संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों में और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 पर कहा कि इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं।
कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा।
विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन 1 से 4 मई तक मुंबई में किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान भारत पवेलियन का उद्घाटन होगा जिसमें देश की विरासत और वैश्विक मीडिया तथा मनोरंजन परिदृश्य के बढ़ते प्रभाव का प्रदर्शन होगा। वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस को आज रोम के सांता मारिया मैगीगोर बेसिलिका में दफना दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में विश्व के नेताओं सहित 2.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार लगभग 2 घंटे तक चला जिसमें कई तरह के अनुष्ठान किए गए। पोप फ्रांसिस का सोमवार को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।